नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। ओडिशा में हिंसा के कारण चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ। गंजम जिले में झड़प में एक भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु और 8 घायल। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाले में 6 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 31 मई के आसपास केरल पहुंचने की संभावना। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में सार्वजनिक सभाएं करेंगे। कल वो बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों में 3 और रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के लिए रायबरेली संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगी, जबकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार भी लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और लोकसभा के लिए दिल्ली के उम्मीदवारों ने आज सुबह की सैर पर निकले लोगों से बातचीत की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में सीतामढ़ी में जनसभा कर रहे हैं। इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व सांसद अर्जुन राय को मैदान में उतारा है। श्री शाह आज मधुबनी संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव रैलियां कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएमएल और अन्य दल भी काराकाट, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और अन्य चुनावी क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें और रैलियां कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी मधुबनी और सारण संसदीय क्षेत्र के तहत बेनीपट्टी, केवटी, मढ़ौरा और अमनौर में सार्वजनिक बैठकें करेंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि भगवा पार्टी कह रही है कि उन्हें इस चुनाव में 400 से अधिक लोकसभा सीटें चाहिए, क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं और आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। वो आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झांसा देने वाली पार्टी है और लोग वास्तविकता जान चुके हैं, वो अब भाजपा को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीएए मोदी की गारंटी का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उसे पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि पहले विकास दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर भी बहुत विकास हुआ है। इससे पहले आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों झूठ बोलते हैं और भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राम मंदिर पर नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। श्री मोदी 2 दिन तक लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वो आज भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगे। वो आज रात लखनऊ के गवर्नर हाउस में रुकेंगे और कल बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों में 3 और रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां उन निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित की जा रही हैं जहां पांचवें और छठे चरण में मतदान होना है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी अराजकता को बढ़ावा दे रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बांदा में भाजपा की निंदा की और कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजू जनता दल के शीर्ष नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सुबह भुवनेश्वर में एक मेगा रोड शो किया। वो आज दोपहर सुंदरगढ़ और बरगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में दो रैलियों को भी संबोधित करेंगे। बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी आज शाम भुवनेश्वर में रोड शो करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के एक दिवसीय दौरे पर हैं और आज दोपहर कंधमाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फूलबनी में एक विशाल सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा से चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट।
गंजाम जिले में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प में भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए हैं। ये घटना कल रात अस्का संसदीय क्षेत्र के श्रीकृष्णा सन्नापुर गांव में चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर लगाने को लेकर हुई। घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में कथित तौर पर शामिल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गंजाम जिले में एक अन्य घटना में दो गुटों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चुनाव आयोग ने गंजाम कलेक्टर को जिले में हिंसा रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन पिछले कई दशक के बाद सभी राष्ट्रीय व स्थानीय दल इस बार अपने स्तर पर ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे राज्य के सभी 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट।
देश में जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो पंजाब में दोनों ही दल एक दूसरे के सामने डटे हैं। परंपरागत साझेदार भाजपा और शिरोमणी अकाली दल की गठबंधन को लेकर बात नहीं बनी, जिससे दोनों ही दल कई दशक के बाद अलग अलग से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा पहली बार अपने बलबूते सभी 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी रण में उतरी है, तो बहुजन समाज पार्टी भी अपने बूते ही चुनाव लड़ रही है। अतीत की तरह वामपंथी दल इस बार भी चुनावी ताल ठोक चुके हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
लोकसभा चुनाव की प्रमुख सीटों के परिचय की श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ओडिशा की सुंदरगढ़ संसदीय सीट पर एक रिपोर्ट। इस निर्वाचन क्षेत्र में आम चुनावों के पांचवें चरण में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उड़ीसा में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर पूरी तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है। राज्य में लोकसभा की 21 सीटें आती है और सुंदरगढ़ लोकसभा उनमें से एक है। ये संसदीय सीट के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें राउरकेला सीट ही सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि अन्य 6 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने ज्वेलोराम को मैदान में उतारा है, जबकि उनसे मुकाबला के लिए बीजेडी ने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को उतारा है। कांग्रेस ने जनार्दन देहुरी को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है इस बार सुंदरगढ़ के जनता किसे चुन रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
झारखंड की धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए की अदालत ने वहां के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को कल से 6 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड में भेज दिया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आलमगीर को कल पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से अनुरोध किया है कि 14 दिन की रिमांड दी जाए, ताकि टेंडर कमीशन घोटाले की और जांच की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रुपए की नकदी बरामद करने के बाद आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाले में कल गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने विभव कुमार को कल उसके सामने पेश होने को कहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के इस महीने की 31 तारीख तक केरल पहुंचने की संभावना है। पिछले साल ये 8 जून को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग ने कहा है कि भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून की प्रगति केरल में मॉनसून की शुरुआत से चिन्हित होती है और ये गर्म और शुष्क मौसम से बरसात के मौसम में परिवर्तन को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जानामणि ने बताया कि परिस्थितियां अनुकूल हैं और मॉनसून के समय पर पहुंचने की संभावना है।
हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग से जो हम लोग जब भविष्यवाणी जारी किया था एक प्रेस नोट, उसके मुताबिक मेनली था कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 का आरंभ का तारीख क्या होगा। तो हम लोग का जो काल जो आंकड़ा आया है कि इस बरस दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होगा केरल में जो है वो 31 मई 2024 है और हम यूज करते हैं इसकी तारीख निर्धारण के लिए, उसमें प्लस माइनस 4 डे 28 मई से 3 जून तक कभी भी दक्षिण पश्चिम मानसून केरल छू सकता है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। 18 और 19 मई को दिल्ली, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी जारी रह सकती है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम के साथ विशिष्ट करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री छेत्री ने बताया कि इस वर्ष 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ आगामी मैच में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम की ओर से वो खेलेंगे। सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मौजूदा कप्तान हैं। उन्होंने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। उन्होंने अपने खेल करियर में 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल करने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। बैडमिंटन में भारत के मीराबा लुवांग मैसनाम आज बैंकॉक में प्रतिष्ठित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 21 वर्षीय भारतीय शटलर ने डेनमार्क के मैड्स क्रिस्टोफरसन को सीधे सेटों में 21-14, 22-20 से हराकर सुपर 500 टूर्नामेंट में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भाला फेंक खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में कल फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। चौथे राउंड में उन्होंने 82.27 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने T20 विश्व कप 2024 के दौरान भारतीय संकेत भाषा और ऑडियो कमेंट्री उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न निजी चैनलों के इंडिया साइनिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग की सराहना की है। उत्तराखंड में तीर्थ यात्री बिना पंजीकरण के 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते। नाकों और अन्य स्थानों पर सख्ती से जांच की जाएगी और बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि अपने अपने राज्य के तीर्थ यात्रियों को 4 धाम यात्रा की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें।
पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए।
IPL क्रिकेट में हैदराबाद में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। ओडिशा में हिंसा के कारण चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ। गंजम जिले में झड़प में एक भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु और 8 घायल। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाले में 6 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 31 मई के आसपास केरल पहुंचने की संभावना। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।